ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। वेदे रामायणश्चैव पुराणे भारते तथा आदौ च अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधव श्रीगुरुदिनतारिणी। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 12 श्लोक संख्या 7। वर्जयेत् प्रमदागाथम् अगृहस्थ बृहद्व्रतः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि जतेः मनः। वर्जयेत् प्रमदागाथम् अगृहस्थः बृहद्व्रतः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि जतेः मनः। वर्जयेत् प्रमदागाथम् अगृहस्थः बृहद्व्रतः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि जतेः मनः। आवृत कीजिए। अगृहस्थ बृहद्व्रतः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि वर्जयेत् प्रमदागाथ अगृहस्थ बृहद्व्रतः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि जते मनः। वर्जयेत् प्रमदागाथ इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि जतेः मनः। वर्जयेत् प्रमदागाथ अगृहस्थ बृहद्व्रतः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरं जपेशते मनः। वर्जयेत् प्रमदागाथ अगृहस्थ बृहद्व्रतः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि ग्रंथ्यपीयते मनः। शब्दनुवाद वर्जयेत् त्याग दें, प्रमदागाथम स्त्रियों से बातें करना, अगृहस्थः जिसने गृहस्थ आश्रम नहीं स्वीकार किया अर्थात ब्रह्मचारी या सन्यासी, बृहद व्रतः अटल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, इंद्रियाणि इंद्रियों को, प्रमाथीनि प्रायः अजय हरन्ति चुरा लेती हैं, अपि भी यतेह सन्यासी का, मनः मन। श्लोक का अर्थ है ब्रह्मचारी अथवा जो अगृहस्थ नहीं अपनाया है उसे स्त्रियों से बातें करने या उनके विषय में बातें करने से दृढ़ता पूर्वक बचना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती है कि वे सन्यासी के मन को भी विचलित कर सकती हैं। श्रील प्रभुपाद द्वारा दिया गया तात्पर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ है विवाह न करने का व्रत धारण करना तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य बृहद व्रत रखना। ब्रह्मचारी या सन्यासी को स्त्रियों से बातें करने या स्त्री एवं पुरुष की वार्ता वाले साहित्य को पढ़ने से बचना चाहिए। स्त्रियों की संगति पर पाबंदी का आदेश आध्यात्मिक जीवन का मूल मंत्र है। स्त्रियों से बातें करने या उनकी संगति करने का परामर्श किसी भी वैदिक ग्रंथ में नहीं मिलता। समग्र वैदिक प्रणाली मनुष्य को विषयी जीवन से बचने की शिक्षा देती है, जिससे वह क्रमशः ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से संन्यास की दिशा में बढ़ता जाए और भौतिक भोग का त्याग करे जो इस भव बंधन का मूल कारण है। बृहत व्रत उस व्यक्ति का सूचक है जिसने विवाह न करने का निश्चय किया हुआ है, अथवा दूसरे शब्दों में ऐसा व्यक्ति जिसने यह व्रत लिया है कि वह आजीवन कामासक्त जीवन में अनुरक्त नहीं होगा। हरे कृष्ण। सबसे पहले श्री श्री राधा रस बिहारी जी, श्री श्री गौर निताई जी, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के चरण कमल में अपने आप को समर्पित करता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करके मैं श्रीमद् भागवत के इस श्लोक के ऊपर श्रील प्रभुपाद के आधारित तात्पर्य और अन्य वैदिक साहित्यों के आधार पर कुछ कहने के लिए ये मेरा कोशिश है। और सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सब वैष्णव, यहाँ के सभी वरिष्ठ वैष्णव, सबके चरण कमल में अपने आप को स्वीकार करता हूँ, अपने आप को समर्पित करता हूँ। तो सबसे बड़ा मुश्किल चीज हमारे लिए ये है कि हमको हिंदी बोलना नहीं आता। ये बिल्कुल खुली बात है क्योंकि हम उड़ीसा में रहने वाले हैं और आप यहाँ पर जितने वैष्णव है उड़िया लोग को छोड़कर यहाँ पर जितने भी है उनको उड़िया समझ में नहीं आता होगा, तो ये बहुत बड़ी मुश्किल बात है। इसलिए मैं अपनी टूटी फूटी आवाज में कुछ हिंदी कहने के लिए कोशिश करता हूँ और जो भी गलती होगा, ये गलती तो होगा ही, इसको आप आपकी बुद्धि बल से समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि मेरे हिंदी इतना अच्छा ही नहीं है, बस ऐसे सुन सुनकर कुछ कह देता हूँ, तो आपकी कृपा ही सार है। तो ये जो अध्याय हमने श्रवण करके आ रहे हैं ये श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद का ये 12 अध्याय है। तो इस अध्याय के सार है ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ सन्यास, इस स्थिति में कैसे गुजरना चाहिए, इस सबका कर्तव्य क्या है, इसके बारे में शिक्षा है। और ये शिक्षा कौन दे रहे हैं? ये दे रहे हैं स्वयं नारद मुनि। नारद मुनि ये शिक्षा दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को और ये शिक्षा दे रहे हैं उस समय पर जहां آپ سب جانتے ہوں گے جہاں پر راشٹریہ یگ ہونے کا آیوجت ہوا تھا, اس راشٹریہ یگ کے ستھل پر ہی پروچن ہو رہا ہے. تو یہ پروچن کا سار یہ ہے کہ برنشٹرم دھرم کا پروچن دیتے ہوئے نارد منی نے اس پرسنگ پر آئے ہیں. تو اس شلوک میں بتایا گیا ہے کہ برجت پرمودا کا تھا گرہست برہت برتہ اگرہست برہت برتہ اندریانی پرماتھینی ہرنتی اپی یتہ منہ. تو شلوکارتھ ہے برہمچاری جو اگرہست, اسے استریوں سے باتیں کرنے یا ان کے وشے میں باتیں کرنے سے درڑھتا پوروک بچنا چاہیے, کیونکہ اندریوں اتنی پربل ہوتی ہے کہ وہ سنیاسی کے من کو بھی وچلت کر سکتی ہیں. تو سار ہے جیسے شریمد شری چیتنیہ چریتامرت میں بتایا گیا ہے جیو کا سوروپ کیا ہے, جیو کا سوروپ ہے وہ کرشن کے نتیہ داس ہے. اور ہم سب یہ بات پر درڑھ نشچت ہے کہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے. کہاں جانا ہے؟ بھوان کے دھام کو جانا ہے. اور بھوان کے پاس جا کر کیا کرنا ہے؟ بہت آرام سے موج مستی کرنا ہے, نہیں, بھوان کے سیوا میں نرنتر لپت رہنا ہے. تو الٹیمیٹلی بھوان کو پانا ہی جیون کا سار, جیون کا سدھانت ہے, جیون کا الٹیمیٹ گول ہے, جیسے پربھا جی مہاراج بتا رہے ہیں. تو یہ جو برنشرم دھرم کیوں بتائے ہیں, آتما کا سوروپ ہے وہ بھگوان کا سیوا میں ہی لگے گا, لیکن یہ جو شریر پا گیا ہے یہ شریر, یہ سب برنشرم دھرم جو ہے یہ شریر کی آوشیکتا کو مینٹین کرنے کے لیے. میں ٹوٹی موٹی آواز میں بول رہا ہوں, آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. تو یہ شریر کی آوشیکتا کو مینٹین کرنا ہی یہ برہمچاری مطلب یہ برنشرم دھرم کی نیم ہے. لیکن الٹیمیٹلی ہم سب کو بھگوان کے پاس ہی جانا ہی ہے, اور سب آشرم اور سب برن کا یہ الٹیمیٹ گول ہی ہے. یہ تب تین آشرم کا چرچا اس ادھیائے میں ہے, لیکن چودہ ادھیائے میں اس ادھیائے اور تریدش ادھیائے, یہ دو ادھیائے میں یہ سب ہے. چودہ ادھیائے میں یدھیشٹھیر مہاراج نے پرشن کیے. یدھیشٹھیر مہاراج کا پہلا پرشن تھا کہ ہم وہ پدوی کو کیسے پراپت کر سکتے ہیں. یدھیشٹھیر مہاراج پرشن کیے تھے گرہستھ ایتنگ پدوی ودھینگ جین چ انجسا یایا دیوروشی بروہی مادرش گروہ موڑھدھی. ہے دیورشے, مجھ جیسے گروہ موڑھدھی گروہ میدھیوں کو گروہ میدھی کو بتائیے کہ اس پدوی کو ہم کیسے پراپت کر سکتے ہیں آسانی سے. بدھنگ جین چنجسا, آسانی سے گرہستم ایتنگ پدوی, ایتنگ پدوی اس پدوی کو, ایتنگ پدوی اس سب میں شیوا وشنا چکر ٹھاکر بتاتے ہیں پوربکتا مکھیہ لکھنات. اس کا مطلب پوربکتا مکھیہ لکھنات. تو برہمچاری بانپرست اور سنیاسی یہ تین آشرموں کا سدھی کیا ہے؟ موکش. موکش مطلب بھگوان کے پاس جا کر بھگوان کے نتیہ سیوا میں نمگن ہونا. تو اس پدوی کو گرہست کیسے پا سکتے ہیں, یہ یدھیشٹھیر مہاراج کا پرشن تھا نارد منی سے. تو کہنے کا تاتپری یہ ہے کہ چاروں ورن اور چاروں آشرموں کا یہی لکشیہ ہے. تو اس شلوک پر بتایا گیا ہے کہ برہمچاری کو کیسے رہنا چاہیے, اور اس سے پورو بہت شلوک بھی ہے برہمچاری کو کیسے رہنا چاہیے, لیکن اس شلوک سے بہت گروتوپورن بات بتا رہے ہیں نارد منی کہ برہمچاری کا جیون چریا کیسی ہونی چاہیے. تو یہاں بتایا گیا ہے کہ برجت پرمودا گاتھم اگرہستھ برہت برتہ, برہت برتہ برہت برت برہمچاری جو بالکل گرہست آشرم میں پرویش کرنے کے لیے جن کا چت نہیں جاتا, جو سنکلپ لیے ہیں کہ میں ساری جیون برہمچاری برت میں ہی استھر رہوں گا, ان کو برہت برت برہمچاری کہتے ہیں. تو گرہست آشرم میں پرویش کرنے کے لیے جس کی اچھا نہیں ہے وہ مطلب جیسے پربھا جی بتا رہے ہیں جیسے ساری جیون برہمچاری لائف مینٹین کرنا, تو ان کا اگرہست بتائے. اور جیسے کہ
बृहद्वत ब्रह्मचर्य बताया गया है। तो इस ब्रह्मचर्यों को कैसे रहनी चाहिए, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, ये सब इस श्लोक में बताया गया है। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि मेरी लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम है और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हो सकता है और पुलिंग स्त्रीलिंग के भी कुछ कुछ फर्क आ सकता है, इसलिए ठीक है आपकी कृपा। तो ये नारद महर्षि नारद मुनि बता रहे हैं युधिष्ठिर को कि कैसे रहने चाहिए। तो इस श्लोक में बताया गया है, नारद मुनि बताते हैं, इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति अपि यते मनः। उस टाइप का एक श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, जततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसवं मनः। तो ये इंद्रिय कैसे है, ये प्रमाथिनी है। प्रमाथिनी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि मंथनकारी, मतलब ये इंद्रियो ऐसे है, इंद्रियो भगवान तो बताए हैं ना, इंद्रियाणि प्राण्याहु इंद्रियभ्य परंग मनः। तो ये इंद्रियो ऐसे बलवान है, ये मन को खींच कर ले जाते हैं विषय भोग की तरफ, ऐसे ये इंद्रिय है। और किसके मन को ले जाते हैं, विपश्चित, बहुत विद्वान लोगों के मन को भी खींच कर ले जाता है ये इंद्रिय। इसलिए इंद्रियों को बहुत भयंकर बताया गया है सब शास्त्रों में, बहुत सारे शास्त्रों में इंद्रियों के बारे में बताया है। तो यहाँ पर भी नारद मुनि ऐसे बोलते हैं, इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति अपि यतेह मनः। हरन्ति अपि, अपि भी, यतेह मनः, सन्यासियों के मन को भी इंद्रिय हर लेती है। ये सही बात है, ये तो इस हिसाब से तो हम अगर चर्चा करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल से, जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि इंद्रियों कैसे मन को हर लेती है। सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज के सामने बता रहे हैं तो ये श्लोक भी आता है, मात्रा स्वच्छा दुहित्रवा न विविक्त सुन भवेत बलवान इंद्रग्राम विध्वंसपि न कर्षति, विध्वंसपि कर्षति। तो यहां पर यह भी बताया गया है कि बलवान इंद्रग्राम विध्वंसम अपि कर्षति, विद्वान लोगों को भी वो विचलित कर देता है, उनका मन को भी खींच कर ले जाता है। लेकिन ये बात जब जैमिनी ने देखे तो जैमिनी के मन में थोड़ा संशय आ गया। जैमिनी सोचने लगे, अरे मेरे गुरुदेव व्यासदेव जी शायद कुछ भूल लिख दिए कि विद्वानों का तो मन को तो हरण नहीं कर सकते इंद्रियों। तो उन्होंने सोचा शायद गुरुदेव ये गलती से लिख दिए होंगे, तो उन्होंने उसको करेक्शन कर दिया। वो क्या कर दिया, व्यासदेव ने लिखा था विध्वंसम अपिकर्षति, लेकिन जैमिनी ने लिखा, उन्होंने बताया गुरुदेव को और लिख दिया कि आप विध्वंस ना अपिकर्षति, विध्वंसों का मतलब विद्वान लोगों का मन को हरण नहीं कर सकता, आम आदमियों के मन को हरण कर सकता है इंद्रियों। तो ये बात सुनकर व्यासदेव कुछ बोले नहीं, उन्होंने सोचा ठीक है जैमिनी को एक शिक्षा देनी चाहिए। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, उन्होंने क्या किया, तुरंत चले गए। तो उस समय जैमिनी जी आश्रम में हैं, अकेले हैं, शाम हो गया, शाम के समय स्वयं व्यासदेव आ गए एक स्त्री के रूप में, एक स्त्री के रूप में आ गए। आकर बारिश हो रहा था, उन्होंने बताया कि मुझे थोड़ा आश्रय चाहिए क्योंकि मैं अपनी सहेलियों के साथ आई थी, थोड़ा मिस्टेक्स होगी तो मैं अपनी सहेलियों के साथ आई थी और मेरी सहेलियों कहाँ गुम हो गई, तो मैंने अपनी रास्ता भूल गई, तो आश्रय लेनी चाहिए और सुबह होते ही, सूर्योदय होते ही मैं चला जाऊंगी यहां से। लेकिन जैमिनी ने क्या बोले नहीं नहीं नहीं, ये हमारा आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, यहां पर कौन भी स्त्री नहीं रह सकता, हम तो नहीं रख सकते। तो उस समय वो स्त्री क्या बोली देखिए, हमको मालूम है कि ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, यहां पर कोई स्त्री नहीं रह सकती, लेकिन क्या किया जाए, जो शरणागत है उनको सुरक्षा देना भी आपका कर्तव्य है, और मैं एक अबला हूं, आपके शरण में आया हूं, तो कम से कम एक रात तो रहने के लिए कृपा कीजिए ना, صبح ہوتے ہی میں چلا جاؤں گی. تو یہ سن کر جیمنی نے بولا ٹھیک ہے ایک کام کیجئے میرے بغل والے کمرے میں آپ رہ لیجئے. تو انہوں نے بتایا کیسے رہنی چاہیے, انہوں نے بتایا کیو آر کو بالکل بند کر دیجئے, اندر سے بند کر دیجئے, کوئی بھی اگر پکارے کوئی بھی اگر کھولنے کی جگیاسا کرے تو آپ مت کھولیے. ایسے کہ اگر میں بھی آؤں, میں اگر آ کر بھی کھولنے کی جگیاسا کروں تو ہی مت کھولیے. انہوں نے بولا ٹھیک ہے, ایسا کہہ کر اندر چلے گئے. لیکن اندر جانے کے بعد جیمنی جب بیٹھے ہیں, دیکھیے انہوں نے لکھا تھا کیا بدنسم ناپی کرشتی, لیکن وہ جب ستھر ہو کر بیٹھے ان کا من کھینچنے لگا اور وہ کچھ سمے کے بعد جا کر خود جا کر کیواڑ کو ٹھک ٹھکانے لگے. کیا ہندی میں کیا بولتے ہیں, نک کرنے لگے, جو اب سمجھ لیجئے گا. تو انہوں نے جا کر نک کیے اور بولے کھولیے کھولیے کھولیے, لیکن وہ اندر سے کچھ آواز نہیں. پھر بہت سمے اسے ٹھوکنے کے بعد انہوں نے سوچا رہے یہ کھول کیوں نہیں رہا ہے. تو ایسا سوچ کے جیمنی کیا کہ جیمنی نے اس کے چھت پر چڑھ کے اس کا روف کو ہندی میں کیا کہتے ہیں مجھے پتا نہیں, روف کو نکال کر اندر گھسنے کی کوشش کی اور گھس بھی گئے, اندر گھس گئے. جب اندر گھس گئے تو جو دیکھے وہ دیکھ کر بالکل حیران ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اندر جب گھسے تو دیکھیں وہاں کوئی استری نہیں تھی, وہاں کون تھا؟ وہاں سوئیں ویاسدیو تھے. جب وہ دیکھے ویاسدیو کو تب وہ سشٹنگ پرنام کیے اور بولے نہیں گرودیو آپ نے جو بتایا تھا وہ صحیح ہے, واستوکتا یہ ہے کہ بدنسم اپی کرشتی بلوان اندرگرام بدنسم اپی کرشتی. لیکن انہوں نے بتایا تھا کیا, انہوں نے لکھ دیا تھا کیا نہ بدنسم ناپی کرشتی, نہیں بدنسم اپی کرشتی. ٹھیک اسی طرح کی بات یہ شلوک میں ہے, نارد منی بتا رہے ہیں اندریانی پرماتھینی ہرنتی اپی جتے منہ. تو اندریا ایسے ہیں یہ جتے منہ سنیاسیوں کے من کو بھی کھینچ لیتا ہے. اور کیا بتائیں, جیسے ایک درشٹانت بھی ہے, بہت سارا درشٹانت ہے. آپ شاید آپ کو معلوم ہوگا کالیداس کا نام تو شاید سب کو معلوم ہوگا. کالیداس بہت بڑے ودوان تھے, وہ کہاں پر تھے, وہ تھے بھوج راج سبھا میں. بھوج راج سبھا کے وہ ایک بتایا گیا ہے جیسے کہ ایک رتن تھے, رتن ہندی میں رتن ہی بولتے ہیں نا, رتن تھے. لیکن ان کا من بھی ایسے وچلت ہو گیا, ان کا من کو بھی ہرن کر لیا ایک استری نے. اور وہ استری کون تھی, ایک سادھارن, مطلب وہ راج سبھا میں آتی تھی جھاڑو دینے والی, جھاڑو دینے کے لیے ایک نوکرانی آتی تھی. لیکن کالیداس کا من اس طرف چلا گیا. دیکھیے پرماتھینی اندریانی, اندریا کتنا بلوان ہے. وہ کالیداس کا من کو کھینچ لیا ایک, اور ایک دن کیا ہوا, ایک دن دونوں کہاں غائب ہو گئے. تو اندریانی پرماتھینی, اس لیے بتاتے ہیں اندریانی پرماتھینی ہرنتی اپی جتے ہے منہ, جتے ہے منہ. اور شریمد بھاگوتم میں تو یہ بتایا گیا ہے شیو جی کا من کیسے وچلت ہوا تھا, موہنی کے روپ کے طرف آکرشت ہو کر شیو جی کا کیا حال ہوا, یہ تو سب جانتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیو جی نندنیہ ہے, نہیں, شیو جی ویشنوانا یتھا سمبھو, شیو جی کو ہم نندا نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ درشٹانت یہ ہے کہ من کو کیسے ہر لیتی ہے اندریا. تو اس درشٹانت کے مادھیم سے ہم سب کے لیے سکشا ہے کہ جہاں شیو جی کا اندریا بھی ہرن ہوتا ہے ہم کیا ہے. جیسے بتایا گیا ہے ہم کسی کون سی کھیت کی مولی ہے, ہندی میں ایسا بتایا گیا ہے, تو ہمارا کیا ہوگا. کہنے کا تاتپرج ہے کہ جو برہت برہت برہمچاری ہے ان کو کیسے رہنی چاہیے, یہ اس شلوک کی سکھیا ہے. تو شیو جی کا کیوں ایسے ہوا, کیونکہ شیو جی تو بار بار بولتے لگے نا کہ پربھو جی مجھے وہ روپ دیکھنی چاہیے جو روپ آپ نے دکھایا تھا موہنی بن کر. بھگوان بار بار منع کر رہے ہیں, ارے شیو جی تم تو پرم ویشنو ہو, تم کیوں اس روپ کے لیے لڑائی ہو, دیکھنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں, روپ دیکھنے کے لیے تمہارے لیے کوئی ضرورت نہیں, تم تو بھجن کرنے والے ہو, تم تو رام رام کرو, یہ روپ دیکھنے کے لیے کیوں اتنا اتاولا ہوتا ہو. شیو جی بولے نہیں پربھو جی میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ روپ. اور شیو جی کے من میں تھوڑا سا آ گیا کیا, انہیں سوچا رہے میں کیوں بچلت ہوں, میں وچلت نہیں ہونے والا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں تو بہت بڑے تپسوی ہوں, بہت بڑی گیانی ہوں, بہت بڑے دھیانی ہوں. ہاں آسری لوگ بھرمت ہو سکتے ہیں لیکن دیوتا نہیں, اور میں تو مہادیو ہوں. ان کے من میں ایسا آ گیا, اور ایسے سوچتے سمے ہی آ گئے موہنی جی ایک گیند کو کھیلتے ہوئے آ گئے. وہ تو میں ورنن ہے, سب جانتے ہیں. دیکھیے شیو جی کا من کو بھی ہرن کر لیا, اس لیے بتایا گئے ہیں اندریانی پرماتھنی ہرنتی ابھی جاتے ہیں مانا, جاتے ہیں مانا. اور جیسے شریمد بھاگوت میں اور مہابھارت میں بھی ایسا ورنن ہے, پانڈو جی, پانڈو کے نام تو سب کو معلوم ہوگا, پانڈو مہاراج, مہاراج پانڈو نے ان کا من کو بھی کیسے ہرن کر لیا اندریوں نے. مہاراج پانڈو کو ابھیشاپ تھا, ساپ, ہندی میں ساپ بولتے ہیں شاید, ساپ تھا. کون یہ ساپ دیے تھے؟ کندم منی. کندم منی نے ساپ دیے تھے. کیا ساپ دیے؟ کہ اگر آپ نے استریوں استری کے مطلب استری سہواس کریں گے تو آپ کا اسی کھن ہی مرتیو ہو جائے گی. استری سنگ جب کریں گے, استری سنگ کرنے سے آپ کا مرتیو ہو جائے گی. یہ ساپ کندم منی نے دیے تھے. تو اس ساپ کے بعد پانڈو مہاراج کیا کیا کہ انہوں نے سب راج بھوگ, سب راج بھون, سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے ون میں. اور ون میں گئے, ون میں جا کر سوچ کر کیا گئے ہیں کہ میں ون میں جاؤں گا اور ایک تپسوی کی طرح جیون بتاؤں گا, بالکل تپسوی بن جاؤں گا. ایسے کہ جیسے ہمارا سڑگو سوامی کا وچار ہے, سڑگو سوامی کا جیسے جیون شیلی ہے, وہ اس وچار میں استھت تھے. انہوں نے سوچے تھے کہ میں ایک ایک برکش کے نیچے ایک ایک رات گزاروں گا, ایسے سوچ کر گئے تھے پانڈو جی. اور جٹا دھارن کروں گا, بلکل پہنوں گا, اور سم اوستھا کو پراپت ہوں گا, جیسے بھگوت گیتا میں بتایا ہے, شیت کشن میں سم رہوں گا, کسی کو دویش نہیں کروں گا, سب کے ساتھ سم ویوہار کروں گا, ایسے سوچ کر گئے تھے. اور ان کو گیان بھی تھا کہ اگر وہ استری سنگ کریں گے تو کیا ہوگا, ان کی مرتیو انیواریہ ہے. لیکن دیکھیے اندریانی پرماتھنی ہرنتی ابھی جاتے ہیں مانا, ان کو معلوم تھا کہ مرتیو ہے, اگر استری سنگ کریں گے تو مرتیو ہے. پھر بھی ون میں بچرتے ہوئے ایک سمے ایسا آیا کہ وہ مادری کے پرتی آکرشت ہو گئے, اور مادری بھی منع کر رہے ہیں, ارے سوامی جی آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے بولا نہیں نہیں نہیں, دیکھیے ہرنتی ابھی من, یہ کہنے کا تاپرج یہ ہے کہ جو جانتے ہیں کہ میرا مرتیو ہے, اگر میں استری سنگ کروں گا تو مرتیو ہے, پھر بھی ان کو من کو ہر لیتا ہے اندریا. تو کہنے کا تاپرج یہ ہے کہ من اور اندریا کتنے دردانت ہے, پربھات بتا رہے ہیں کتنے دردانت ہے. ہندی میں تو کیا بتا, پتا نہیں کیا ہوتا. تو ٹھیک ہے, تو ایسا یہ اندریا اور من ہے, اس لیے بتایا گیا ہے اندریانی پرماتھنی ہرنتی ابھی جتے مانا. تو یہ شلوک نارد منی بتا رہے ہیں, اس کا تاتپریہ کیا ہے؟ تاتپریہ یہ ہے جو برہت برت برہمچاری ہے, برہمچاریوں کے لیے کیسی رہنی چاہیے کہ اگر اندریا ایسے ہر لیتا ہے تو برہمچاریوں کا من کو ہر نہیں لے گا, تو ہر لے گا نا. اگر دیکھا جائے تو سنیاسیوں کا من کو بھی ہر لیتا ہے تو برہمچاری کو تو ہر لے گا. اس لیے نارد منی بتا رہے ہیں نہیں, برجت پرمدا گاتھا, استریوں کے بتا رہے ہیں نا, برجت پرمدا گاتھا مطلب استریوں کے استریوں سے باتیں کرنا یہ تیاگ دیں برجت. اور یہ مطلب کوئی اگر پرشن کے تو ہم تو بک ڈسٹریبیوشن کے لیے جاتے ہیں, تو ہم تو بک تو سب کو دکھانا چاہیے نا, یا صرف پروش لوگ کو دکھانا چاہیے؟ نہیں, سب کو دکھانا چاہیے. تو کیسے پربھات جی بتا رہے ہیں اس کے پہلے شلوک کے تاتپریہ میں, جسٹ دکھانا چاہیے اور بکس کے بارے میں بولنا چاہیے, کرشن سمبندھی بات بولنا چاہیے, پھر آ جانا چاہیے. اور شاستر میں ایسے سدھانت ہے, ہمارے شیشم گور گوبند گوسوامی مہاراج بول رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ جب استریوں کے ساتھ بات کیے ہوں گے اس سمے کیسی بات کرنی چاہیے, ان کے پیروں کو درشن کرنی چاہیے, مکھ کو نہیں. تو بتائیے برہمچاریوں کے لیے کتنی کڑی تپسیا ہے. اگر من میں استھر ہے کہ میں ساری جیون برہمچاری رہوں گا, اس لیے تو श्रीधर स्वामी श्रीपद श्रीधर स्वामी ने बताया कि ब्रह्मचर्य के 8 लक्षण है। ये 8 लक्षण को पालन करना ही ब्रह्मचर्य जीवन का सही अंग है। क्या क्या? स्मरणं कीर्तनं केली प्रेक्षणं गुह्य भाषणं संकल्प अध्यवसाय च क्रिया निवृत्त्येव च एतै मैथुन अष्टंगो प्रवदन्ति मनीषिणा। मनीषिणा, विद्वान लोगों ने बताया है कि ये ब्रह्मचर्य के 8 अंग है। ये 8 अंग को पालन करना चाहिए। कैसी? कड़ी तरफ से। क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली, हिंदी में, इंग्लिश में जो बोलते हैं, स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। स्मरणं, स्मरणं मतलब कौन? कोई भी स्त्री के बारे में स्मरण करना। अगर कोई किसी स्त्री के बारे में अगर स्मरण करता है तो उसका ब्रह्मचरित्व अंग हानि होता है। स्मरणम, कीर्तनम बातें करना, स्त्रियों के बारे में बातें करना, स्त्रियों के संग ही बात करना, जैसे इस श्लोक में बताया गया है, स्त्रियों से बातें करना। कीर्तनम, स्मरणम, कीर्तनम, केली, केली मतलब कौन? किसी स्त्री के साथ जोकिंग, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? जोकिंग, जोकिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? मजाक करना, परिहास, मजाक, ये करना, ये ब्रह्मचारी का हानि होता है। ये सब ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये श्रीधर स्वामी बता रहे हैं। स्मरणम, कीर्तनम, केली, प्रेक्षणम, प्रेक्षणम मतलब दृष्टि देना। कैसी दृष्टि? रूपा जी बता रहे हैं, लस्टीफुल डिजायर, खराब नजर से, बुरी नजर से देखना। वो तो रास्ते में हम जाते हैं, सब गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है सबको मालूम होगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह सफेद। तो क्या लिखा हुआ है? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो देखिए, ये लिखा हुआ है किसके लिए? ये आम आदमियों के लिए लिखा हुआ है। तो सोचिए ब्रह्मचारी का स्थिति कैसा होना चाहिए। अगर ब्रह्मचारी किसी स्त्री को अगर ऐसे देखें तो उसका मुंह क्या होगा, काला या क्या होगा? हम सबको सोचना ही चाहिए ना। तो प्रेक्षणम और गुह्य भाषणम, गुह्य भाषणम प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इंटीमेसी टॉक, मतलब हिंदी में क्या होता है? अंतरंग आलाप, ये होता है ना, इंटीमेसी टॉक जिसको बोलते हैं, अंतरंग आलाप मतलब एकांत में बातचीत करना, गुह्य भाषणम। और संकल्प अध्यवसाय क्रिया निवृत्ति एवच, संकल्प, संकल्प मतलब कोशिश करना, सोचना मैं जाकर मिलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये संकल्प। अध्यवसाय, अध्यवसाय मतलब चेष्टा, इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइंग, चेष्टा करना। और लास्ट में क्रिया निवृत्ति एवच, संग करना। तो ये ब्रह्मचारी के 8 अंग है। ये 8 अंग से निवृत्त होना ही ब्रह्मचारी का सही लक्षण है। तो ये 8 अंग को क्या बोलते हैं? सिद्धू स्वामी पद बोलते हैं, इस 8 अंग को बोलते हैं मैथुन। ये मैथुन के 8 अंग है। एतै मैथुन अष्टंगो प्रवदन्ति मनीषिणा। इस 8 अंग को मनीषी लोग बताते हैं क्या, कि ये मैथुन है। तो ब्रह्मचारियों को कैसी रहनी चाहिए? इस श्लोक में तो बस एक ही बात बताए हैं नारद मुनि। क्या बताए हैं? वर्जयेत प्रमादाघातम्। लेकिन ये 8 है। तो ब्रह्मचारियों के लिए कैसी रहना चाहिए? ये वास्तविकता ये है, अगर ब्रह्मचारी जीवन में अगर हम आसक्त हो जाते हैं, बस जो कोई भी अगर स्त्रियों के प्रति आसक्त हो जाए तो कितना बड़ा घाटा है। ये है, ये शास्त्रों का सिद्धांत है। इसका मतलब यह नहीं कि हम गृहस्थ आश्रम को या पति पत्नी को निंदा कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब यह नहीं। लेकिन ये जो आसक्ति, ये जो कामाशक्ति, ये कितना बुरा है, कितना बुरी है, ये बात बताने वाले हैं नारद मुनि। क्योंकि नारद मुनि के तो शिष्य थे, गृहस्थ है ना, प्रहलाद महाराज को शिक्षा दिया, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये तो सब गृहस्थ थे। नारद मुनि के सब तरह के शिष्य थे, ब्रह्मचारी भी थे, गृहस्थ भी थे। तो नारद मुनि ऐसे बताए हैं कि ये बहुत बड़ी खतरनाक, भागवतम में बताया गया है, स्त्री पुंग प्रसंग एतादृक सर्वत्र त्रासम मावह। स्त्री पुंग प्रसंग एतद्रूप, ऐसे जो स्त्री पुंग का ये जो प्रसंग, ये जो आसक्ति है, ये सर्वत्र त्रासम मावह, सदा के लिए और सर्वत्र त्रासम मावह, भयानक। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बात बोले हैं ये भयानक है। तो क्यों भयानक है? क्योंकि वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं बहुत सारे पर्पट में और बहुत सारे क्लास में लेक्चर में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्त्रियों के प्रति आसक्ति होना ये भगवान के धाम के जाने के रास्ता को अवरुद्ध करना है, खास करके ब्रह्मचारियों के लिए। ये भगवान के धाम को जाने के रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है जब कोई ब्रह्मचारी स्त्रियों के प्रति आसक्त हो जाता है। इसलिए यहां पर बताया गया है सर्वत्र त्रासम मावह, सर्वत्र त्रासम मावह। श्री श्रीमद् गौर गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज आप तो शायद जानते होंगे, वो भुवनेश्वर में प्रचार कर रहे थे, प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य, उन्होंने बताए थे कि स्त्रियों के प्रति कोई अगर आसक्त हो जाते हैं लेकिन क्यों हो जाते हैं, उनमें क्या है, क्या एक दृष्टांत देते हैं, बहुत गुरुत्वपूर्ण दृष्टांत है कि एक आदमी, एक लड़का एक लड़के प्रति आसक्त हो गया और हो गया होते होते उन्हें परेशान करने लगा, उनके साथ मिलने के लिए बहुत परेशान करने लगा, लेकिन वो जो लड़की वो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत संस्कारिक, संस्कारिक है ना हिंदी में क्या बोलते हैं, संस्कारी है, तो वो नहीं चाहता था उनसे मिलने के लिए, वो चाहता था अगर आपसे मिल लूं तो विवाह करने के बाद, लेकिन वो उनको तंग करता रहा, नहीं मैं मिलना चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं। तो वो लड़की सोचने लगी ठीक है उनको एक शिक्षा देनी चाहिए, तो उन्होंने बताया ठीक है अगर तुम मेरे साथ मिलना चाहते हो तो मैं थोड़ा मिस्टेक्स होता हूं, तो एक काम कीजिए, उन्होंने डेट फिक्स किया कि इस डेट को आइए मेरे साथ मिलने के लिए, तो डेट फिक्स किया और डेट फिक्स करने के बाद वो घर में है और वो लड़का पूरा क्या बेचैनी से आया, मिलने की उतावला है, अंदर हरंदियों भी जाते हैं माना, वो तो आम आदमी है, तो वो बेचैनी से आया मिलने के लिए उस लड़की के साथ। जब आया वो लड़की अंदर एक बेड पर सो रही थी और दरवाजा खुला था, जस्ट बंद किया गया था, जब वो लड़का आवाज दी उस समय वो लड़की ने बुलाया, कहा ठीक है दरवाजा खुला है खुलकर अंदर आइए। वो जब अंदर गया, अंदर जाने के बाद देखा रे घर में तो कोई भी नहीं है, पूछा अरे मैं जिस लड़की से मिलना चाहता हूं वो कहां है, उस लड़की उस बेड पर लेटी हुई थी, उन्हें बताया नहीं नहीं वो मैं ही हूं, आप जिससे मिलना चाहते हैं वो मैं ही हूं, आइए मेरे साथ मिलिए, मेरे साथ संग कीजिए। लेकिन वो क्या बोला, वो बोला नहीं अरे तुम तो वो नहीं हो, मैं जिसे मिलना चाहता था वो तो तुम नहीं हो, क्योंकि वो कैसा था, वो बहुत सुंदर था, देखने के लिए तो बहुत सुंदर था, इसलिए तो मैंने उनको मिलने के लिए इच्छा क्या जागृत हुई थी। तो उस समय वो लड़की ने बताया, अच्छा तुम मुझसे मिलना चाहती थी या मेरी सुंदरता से मिलना चाहती थी, तो ये बोला नहीं नहीं मैं तुमसे, लेकिन तुम तो बहुत सुंदरी थे, आज ये कैसा रूप हो गया तुम्हारा। तो उस लड़की ने क्या बोला देखिए वास्तविकता ये है कि मैं ही वो लड़की हूं, लेकिन थोड़ा अलग हो गया, क्या हो गया, मैं अपनी ओर से मेरी सुंदरता को अलग करके रख दिया है, तो तुम अगर मेरी सुंदरता को चाहते थे तो मुझे छोड़कर मेरी सुंदरता को लीजिए। तो वो हैरान हो गया, अरे ऐसा हो सकता है क्या, अरे कोई आदमी अपने ओर से अपनी सुंदरता को अलग कर सकता है क्या, लेकिन उन्होंने बताया हाँ हाँ मैं अलग करके रखा है। तो वो पूछा अच्छा तो कहाँ है सुंदरता, दिखाइए। तो उसने बोला ठीक है अगर आप उस सुंदरता को देखना चाहते हो तो बेड के नीचे एक बकेट है, उस बकेट को निकालो। तो उन्होंने बेड के नीचे से क्या बेडशीट को हटाकर बकेट को निकाला, बकेट को निकालते समय उन्होंने सोचा अरे बाबरी ये क्या है, क्योंकि वो बकेट में क्या था मालूम है, बकेट में था हिंदी में क्या बोलते हैं मलमूत्र, सिर्फ मलमूत्र नहीं और भी था, भूमिट करने के बाद उसको क्या बोलते हैं, उल्टी करने के बाद जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, उल्टी बोलते हैं। अच्छा तो वो उस बकेट में मल मूत्र और उल्टी ये भरा हुआ था, तो ये युवक देखकर हैरान हो गया, अरे ये क्या सुंदरता है, तुम क्या बता रहे हो, ये सुंदरता है? तो उन्होंने बताया हाँ ये ही सुंदरता है। तो उसने कहा यार ये क्या सुंदरता है? तो उस समय वो लड़की ने उस युवक को बताया कि तुम जिस सुंदरता के प्रति आकृष्ट हो रहे थे वास्तविकता ये ही वो सुंदरता है, ये आज मेरे शरीर से निकल गया इसलिए मैं आज ऐसा बन गया हूं, असुंदरता जैसे दिख रहा हूं। अगर कोई आदमी अगर किसको डायरिया हो जाए, आप सोचिए डायरिया हो जाए पांच छह दिन अगर लगातार मलमूत्र त्यागने लगे और वोमिट करने लगे तो उसका चेहरा क्या होगा? तो इसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है वो लड़की जो उस लड़का को जो टाइम दिया था मिलने के लिए वो थोड़ी गैप थी, पांच छह दिन ऐसा गैप था। उस गैप से वो किया गया, वो जाकर डॉक्टर से परामर्श किया और डॉक्टर से कुछ मेडिसिन ले लिया। मेडिसिन लेने का तात्पर्य ये था मेडिसिन खाने के बाद जैसे जोर से मलमूत्र त्याग हो और वोमिट हो। तो उस समय उस लड़का का होश आया, अरे बाबरी तो सुंदरता वास्तविकता ये है, ये सही बात है। हम जो बोलते हैं सुंदर सुंदर, क्या सुंदर है? पद्म पुराण में ऐसा बताया गया है ना, आपको सब मालूम होगा ये शरीर क्या है। पद्म पुराण में बताया गया है अस्थि स्तंभ स्नायु बद्धं मांस शोणित लेपितम चर्मावनद्धं पत्रं दुर्गंधं पत्रं मूत्र पुरीशयो। ये मलमूत्र का एक पात्र है। ये पात्र कैसा बनाया है? अस्थि स्तंभ स्नायुबद्धं, अस्थि स्तंभ है इस पात्र का, इस पात्र का स्तंभ है अस्थि, अस्थि स्तंभ, स्तंभ मतलब पिलर, इस पात्र का पिलर है अस्थि। और इसको कैसे बंधाया गया है? स्नायुबद्धं, स्नायु के द्वारा इस पिलर को बांधा गया है। और लेप क्या दिया है? मांस शोणित लेपितं, रक्त मांस का लेप दिया गया है। और कर्मफल के अनुसार कोई सुंदर दिखता है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कैसा है, लेकिन ये कर्मफल के अनुसार होता है ना। लेकिन है क्या चीज, है क्या ये मलमूत्र का एक भांड है, हिंदी में क्या बताए पता नहीं क्या बोलते हैं, पात्र है। तो मलमूत्र का एक पात्र है, मांस शोणित लेपितम चर्मावनद्धं, उस मलमूत्र के पात्र के ऊपर क्या दिया हुआ है? एक चर्म। लेकिन पात्र क्या है? मलमूत्र के पात्र है। देखिए ब्रह्मचर्य को ये बात में स्थिर रहना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब शास्त्रों का सिद्धांत है, ये सब शास्त्रों का सिद्धांत है। ये मलमूत्र का पात्र है, ये इसमें क्या सही चीज है बताइए। तो बोलते हैं ना नवद्वार, नवद्वार में सिर्फ मल ही निकलता है ना। एक बार एक आदमी जा रहा था, जाते समय ये उपमा है आपको शायद मालूम होगा, वो जा रहा था रास्ते में सब मल देखा, मल को देखकर उन्होंने थूका, जब थूका वो मल से आवाज आया, वो मल से क्या आवाज आया? मल कहा अरे भाई मेरे ऊपर क्यों थूक रहे हो? मल बोल सकता है क्या? बोल सकता है मल, लेकिन ये एक उपमा है। तो मल ने बोला कि मेरे ऊपर क्यों थूक रहे हो? तो वो आदमी बोला अरे भाई मैं तेरे ऊपर थूक रहा हूं क्यों? क्योंकि तुम गंदा चीज हो ना, तुमसे दुर्गंध आता है ना, इसलिए मैं तेरे ऊपर थूक रहा हूं। तो उस समय वो मल बताया, बोला ठीक है भैया तुम मेरे ऊपर थूक रहे हो, ठीक है अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन जरा सोचो क्या। देखो मैं जब तेरे पास आया था बहुत सुंदर चीज होकर आया था, क्या? अन्न दाल सब्जी रोटी पराठा पकौड़ा पायस पनीर बहुत रसगुल्ला, बहुत सुंदर चीज होकर मैं तेरे पास आया था। मैं जब तेरे संग किया, तेरे संग करने के बाद मेरा यह अवस्था है, तो बताओ कि मैं दुर्गंध गंधा चीज हूं या तू गंधा चीज है? तेरे संग तेरे जैसे आदमियों का संग करने के बाद मेरा यह स्थिति है, तो गंदा चीज मैं हूं या तू है? अगर थूकना है तो किसके ऊपर थूकना चाहिए? देखिए ये बात सही है, मल बात नहीं बोल सकता, लेकिन बात सही है। मल दुर्गंधी वस्तु नहीं है, दुर्गंध वस्तु कौन है? हम है, क्योंकि ये पात्र क्या है? ये मल मूत्र का एक पात्र है। लेकिन इस पात्र को हम क्या सोचते हैं? अरे ये मेरा भोग्य वस्तु है, ये तो घाटा है। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये ही घाटा है। क्या कौन सी घाटा है? मतलब किस तरह का घाटा है? ये भगवत धाम जाने के लिए अवरुद्ध है, ये रास्ता को अवरुद्ध करने वाला ये चेतना है। कितने समय तक कथा होगी? अच्छा, क्यों नहीं मुझे तो पता नहीं, छोटी मोटी आवाज में बोल रहा हूँ, थोड़ी तो भूल होगी। तो सोचने बात यह है कि हमको सोचना क्या चाहिए। वास्तविकता ये है कि हम शरीर प्राप्त कर चुके हैं, वो भी नारी शरीर में है, लेकिन सब तो भगवान के है ना, सब तो आत्मा ही है ना। ये शरीर मिला है, शरीर का तो काम ऐसा ही है। लेकिन यहाँ जो आलोच्य प्रसंग ये है, वर्जित प्रमदागाथम, मतलब ब्रह्मचर्यों को कैसे रहना चाहिए, उनका दिमाग में ये स्थित होना चाहिए कि हम जो आसक्त हो रहे हैं ये कैसी घाटा है। इसलिए भर्तृहरि, आपको शायद मालूम होगा भर्तृहरि के बारे में, भर्तृहरि बहुत सुंदर बात बताते हैं कि हम जो आसक्त हो रहे हैं ये क्या है। ठीक उसी हिसाब से बताते हैं कि आजकल देखिए, आजकल जितना भी ये प्रसंग ऐसा है, बाह्य एग्जाम्पल देना जरूरी है, और भर्तृहरि इस बात को बता रहे हैं। आजकल बाह्य एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या, आजकल जितने सारे गाना है वो गाना का सार क्या है? गाना का सार ये है कि एक नायक नायिका के बारे में प्रशंसा कर रहा है, या तो नायिका के रूप के बारे में। अरे प्रशंसा अगर करना चाहिए तो भगवान के बारे में प्रशंसा करना चाहिए, लेकिन वो नायिका के रूप के बारे में प्रशंसा करना चाहता है और करता भी है। इस बात को भर्तृहरि जी लिखे हैं, कैसी प्रशंसा करता है, स्तनो मांस ग्रंथि कनक कलशा विच्युत मतो। ये स्तन को क्या बताते हैं ना, ये एक मांस ग्रंथि है, लेकिन इसको कनक कलश, मतलब स्वर्ण का कलश जैसा कवियों लोग वर्णन करते हैं। देखिए कैसे मूर्खामी भर्तृहरि जी बताते हैं, कवि लोग इसको स्तन को क्या बोलते थे, मतलब स्वर्ण का कलश। सिर्फ भर्तृहरि नहीं, ये कोई सोचा है तो अरे ये क्या बात बता रहे हैं, लेकिन ये शास्त्रों का सिद्धांत है। सिर्फ भर्तृहरि नहीं, इस बात को शंकराचार्य जी भी बताए। तो वो कैसे बताते हैं ना, स्तनो मांस ग्रंथि कनक कलशा वित्तिपमतो मुखं श्लेष्मागारं तदपि न ससंकेन त्वरितम्। मुख को कैसा उपमा देते हैं कवि लोग, जिस मुख से लार कफ निकलता है उस मुख को चंद्रमुख की तरफ वर्णना करते हैं कवियों लोग। ये सही बात है, इसका भी उदाहरण है, समय नहीं है, टाइम नहीं है, इसका भी उदाहरण है। इसको देखकर बहुत सारे आदमी का मन में वैराग्य आ गया। जैसे एक काशीपुरी में एक सेठ का लड़का था, उसका नाम था यश। वो ऐसा भोगी था, सेठ का लड़का भोगी था, नर्तकियों रमणियों के साथ ऐसे रंगरेलियां बना रहा था मानो वो नीचे ही उतरता नहीं था। लेकिन एक दिन, ये बहुत विस्तार प्रसंग है, लेकिन एक दिन रात को देखा वो जो टिमटिमाती आलोक, क्या बोलते हैं, प्रकाश, टिमटिमाती प्रकाश में देखा कि बहुत सारे रमणी कैसे पड़े हैं, सब सो गए हैं। सो गए हैं तो किसका मुख से लार टपक रहा है, किसका कपड़ा इधर उधर हो रहा है, किसका बाल बिखरा हुआ है जैसे भूतनी प्रेतनी जैसे दिखते हैं। ये सब देख उस समय उसका मन में बहरा गया, अरे मैं इस शरीर के प्रति आकर्षित हो रहा हूं जो शरीर वास्तव में कुछ भी नहीं है। उस समय उसको बहरा गया आया और उस दिन से वो सब छोड़कर चला गया। तो देखिए ये बताने की बात ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि माता लोग अपने आप को समझे कि मैं आप सब माताओं को घृणा करता हूं, नहीं नहीं ये बात नहीं है। ये जो आसक्ति का विषय के बारे में बताया गया है, हम जो शरीर प्रति आसक्त हो रहे हैं इसका सही मतलब क्या होता है, सही सच्चा क्या, सही सत्ता क्या है, इसके बारे में बताया गया है। तो कभी लोग क्या बताते हैं, न मुखं श्लेष्मागारं तदपि न ससंकेन त्वरितम्। वो मुख को जिस मुख से लार कफ टपकता है उस मुख को उन्होंने चंद्रमा जैसे उपमा दिए हैं। और क्या बताए, स्वयं मूत्रंक्लिन्न करिवर करस्पर्श जहनम। जो जांघो, ये जांघो से मूत्र लिप्त जांघो को उन्होंने क्या बताए हैं, जैसे हाथी के सूंड, हाथी के सूंड जैसे उपमा देते हैं। लेकिन भर्तृहरि लास्ट में बोलते हैं क्या, मुहुर निंद्य रूपं कविजन विशेष गुरुकृति। ये निंद्य रूप है, ये निंद्य रूप को मुहु बारंबार बार-बार उन्होंने प्रशंसा की है, ये है वो है वो है। और शंकराचार्य ने भी ठीक यही बात बताई, नारिस्तनौर नाभि निवेशं मिथ्या माया मोहवेशं एतद् मांसं भजादि विकारं मनसि विचारय बारं बारं भजो गोविंदं भजो गोविंदं गोविंदं भजो मूढ़मते। देखिए शंकराचार्य बताए, मनसि विचारय बारं बारं, बार बार इसको मन में विचार करना चाहिए, किसको, जो बृहत व्रत ब्रह्मचारी है उनको क्या विचार करने चाहिए, नारिस्तनोर नाभि विवेशं निवेशं मिथ्या माया मोहवेशं एतत् मांसं वशादि विकारम, ये सब मांस चर्बियों का विकार है, ये बात बार बार विचार करने चाहिए। तो सोचिए ब्रह्मचारियों को कितने बड़े शिक्षा देते हैं नारद मुनि। इसलिए बताए हैं कि वर्जेत प्रमोदागाथम अगृहस्थ बृहत व्रत, जो बृहत व्रत है, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते नहीं है, जो सारे जीवन ब्रह्मचारी रहने के लिए स्थिर है, मन में स्थिर कर चुके हैं, उनके लिए क्या है, ये सब बात को वर्जित करना चाहिए। नारी प्रसंग बात हो, जो भी हम प्रसंग में आलोचना किए है, ये सबको वर्जन करना चाहिए। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है, अच्छा तो हम कैसे रहें, ये तो आता होगा, ये तो आएगा ही, मन में तो आएगा, क्योंकि तो हम सुन चुके हैं इंद्रियाणि प्रमाथिन हरंति अपि जतेह मन, हरंति अपि जतेह मन, जतेह मन सन्यासियों का मन को भी हर लेता है, तो हम क्या है, तो क्या करना चाहिए, तो करना चाहिए क्या, ये प्रभुपाद जी महाराज बताए हैं क्या करना चाहिए। इसलिए सब इंद्रियों का क्या करना चाहिए, सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में अगर हम लगाएंगे तो धीरे 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 ये मन प्रशमित होगा, ये मन कंट्रोल में आएगा। मन का काम तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज बताते हैं कि मन एक दुष्ट, मन का काम है वो भाग जाएगा, मन का काम है भागना, हमारा काम क्या है, हमारा काम है पकड़कर लाकर किस राजबिहारी के चरण में लगाना, हमारा काम यही है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि रोज सुबह सुबह क्या करनी चाहिए, मन को जूता में मारना चाहिए, मन को चाबुक, चाबुक बोलते हैं ना हिंदी में, मन को चाबुक पहाड़ लगाना चाहिए। अरे मन को चाबुक पहाड़ कैसे लगाए, जूता में कैसे पीटे, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वाणी है। तो मन को जूता पहाड़ चाबुक पहाड़ मतलब सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, धीरे धीरे मन प्रशमित होगा। ये सही बात है, एक दृष्टांत है, एक इंद्रिय का बात मैं बता रहा हूं, चक्षु, चक्षु सबसे खतरनाक इंद्रिय, ये तो पहला ही चला जाता है ना, पहला ही दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन हम तो अभी सुने कि जिस पर चक्षु जाता है वो है क्या, ये तो हम सुने अभी। तो एक व्यक्ति थे बहुत बड़े भोगी, उसका नाम था धनुर्दास, धनुर्दास ऐसे आसक्त व्यक्ति, उनके स्त्री प्रति ऐसे आसक्त, वो मतलब शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, मतलब 24 घंटे अपने स्त्री की मुख को ही देखता रहता था। सोचिए कैसा बड़ा आसक्त व्यक्ति, जहां पर भी जाता था स्त्री के ऊपर छतरी लगाकर जाता था। आजकल ऐसा फैशन हो गया ना, मुख काला ना पड़ जाए, हाथ काला ना पड़ जाए, इसलिए लोग ग्लोव्स पहनते हैं, काला ना पड़ जाए। तो वो उनका विचार भी ऐसा था, उनकी उनका पत्नी के ऊपर वो छतरी लेकर चलता था, मेरी पत्नी का मुंह काला ना पड़ जाए, अरे काला पड़ने से क्या होगा, क्या कोई घाटा हो जाएगा, लेकिन उनका आसक्ति ऐसा है। तो उस आदमी को सब लोग निंदा करते थे, अरे क्या ये उठपटंग बात है, उठपटंग कार्य क्या है, अपने पत्नी के ऊपर छतरी लेकर घूम रहा है। तो एक दिन जा रहा था, उस समय रामानुजाचार्य आ रहे थे दूसरी तरफ से, रामानुजाचार्य जब आ रहे थे उनके साथ उनके शिष्य लोग सब आ रहे थे, उनके शिष्य लोग रामानुजाचार्य को बताएं कि गुरुदेव देखिए कैसा आसक्त आदमी, ये अपनी स्त्री की کتنی بڑی سیوا کرتا ہے, چھتری لے کر گھومتا ہے اور ہر طرف ان کے مکھ کو ہی دیکھتا ہے, کتنا بڑا آسکت ویکتی. تو رامانوجاچار جو بھی سوچے ارے یہ تو بہت بڑا گھاٹا ہے, ان کو معلوم ہے. تو انہوں نے بلایا اور بلا کر بتا ان کو بتایا ارے بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو, سارے لوگ تم کو نندا کرتے ہیں, کیوں تمہارے استری کے منہ میں کیا ہے, ارے استری کے منہ کو دیکھ رہے کیوں چلتے ہو. تو انہوں نے بتایا ٹھیک یہ برتوری کا سدھانت. انہوں نے بتایا نہیں میں میرے استری کے منہ کو اگر نہ دیکھوں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں اور وہیں سے مجھے امرت ملتا ہے. واہ, وہیں سے اس کو امرت ملتا ہے. امرت مطلب منہ سے نہیں پی رہا ہے, وہ آنکھ سے پی رہا ہے, ایسا بولا. تو رامانوجاچار جو بتائے اچھا ٹھیک ہے, اگر میں اس سے بھی زیادہ آسوادنیہ وستو دوں تو تم ایسا کاریہ نہیں کرو گے نا. تو انہوں نے بولا ہاں ٹھیک ہے, اگر اس سے بھی آسوادنیہ وستو آپ دیں گے تو میں یہ کاریہ نہیں کروں گا. تب رامانوجاچار جی نے ٹھیک اسی سمے آ رہے تھے رنگناتھ کی سواری, انہوں نے رنگناتھ جی کو درشن کرایا. بولا دیکھو اگر دیکھنا چیز تم ڈھونڈتے ہو اور تم سوچ رہے ہو کہ یہ تمہاری پتنی کی چہرہ بہت اچھی ہے, تو اس سے بھی بہت اچھی چہرہ کس کا ہے, رنگناتھ جی کا ہے. دیکھو اور جب سادھو دکھائیں ہم تو دیکھتے ہیں, لیکن ہم دیکھ کر ہمارا آنکھ لگتا ہے کیا؟ لیکن ہمارا آنکھ لگنے کے لیے ہی پربھو جی یہ سب وگرہ بنائے ہیں. ہمارا آنکھ نہیں لگتا لیکن پربھو جی کا آنکھ لگتا تھا, روز لگتا ہے, اس لیے پربھو جی تو ڈائریکٹ منہ کر کے بیٹھے ہیں. تو پربھو جی کا آنکھ لگتا ہے تو ہمارا آنکھ لگے, اس لیے تو پربھو جی, اس لیے تو ہمارا اسکن میں ہی ایسا ہے درشن آرتی منگل آرتی, روز تین بار ہر بھکتوں آ کر درشن کرنا چاہیے, پرنام کرنا چاہیے کم سے کم. اس کا مطلب نہیں تین بار ہی آنا چاہیے, نہیں کم سے کم. تو جب دھنرداس دیکھے رنگناتھ جی کو, دیکھنے کے بعد ان کا یہ مایا یہ بھرم یہ ٹوٹ گیا اور وہ ترنت رنگناتھ جی کے پرتی آکرشٹ ہو گئے. تو دیکھیے ایسے بہت سارا ادھارن ہے. کہنے کا تاتپر یہ ہے کہ اگر ہم بھکتی کریں بھگوان کی اور اپنا من لگائیں, ہمارا اندرو کے دوارا بھگوان کی سیوا میں نجکت ہونے کی کوشش کی, تو دھیرے 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 یہ سب ہوگا. اس کے لیے اور دوسرا کوئی پریاس نہیں ہے, اچھی طرح سے بھگوان کے نام کرنا چاہیے اور اچھی طرح سے بھگوان کی سیوا کرنا چاہیے, اور یہ ہی مادھیم ہے, اس کے دوارا ہی ہم یہ استھتی میں استھر رہ پائیں گے اور برہمچاری جیون کو صحیح طریقے سے ہم نبھا پائیں گے. تو اسے یہ کتھا کو یہاں پر وشرام دیتا ہوں. سبھی ویشنو کا سبھی ویشنو کو پرنام کرتا ہوں, کیونکہ میرے بات تو بہت جھوٹا موٹا اور کیا بتاتے ہیں ٹوٹا موٹا, یہ آواز بھی مطلب لینگویج بھی ٹھیک ہے. جائے شری شری گوتائی کی, جائے شری شری رادھا راس بہاری کی, جائے شری شری سیتا رام لکشمن ہنومان کی, جائے شری پربھو جی مہاراج کی, شری گرنتھراج شریمد بھاگوتم کی, انند گڑی ویشنو بند کی, سمبید گور بھکت بند کی, نتائی گور پرمانندے ہری ہری. جائے شری پربھو جی.